प्रिय भक्तजन, भाइयों बहनों, बच्चों, बालक बालिकाओं, आप सबको 29 अगस्त 2020 का ये दिन मंगल में हो, आप भगवान की ओर अग्रसर हो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो। अब मैं आपको गीता अध्याय 11 का 19वां श्लोक सुनाने जा रही हूँ। श्लोक है अनादि मध्य अनंत अनंत दीर्घम अनंत बाहुं सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तप्रकाश भक्तम स्वतेजसा विश्व इदं ततं तब। आपको मैं आदि मध्य और अंत से एक अनंत भावशाली अनंत पूजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्र वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। श्लोक 20 धावा पृथ्वी आदि अनंतम ही व्याप्तम तो एक दृश्य सर्वा दृष्टवाद्भुत रूप उग्रम तवेलम लोक प्रवृत्तम महात्मन। हे महात्मन, ये स्वर्ग पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं। आपके साद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं। लोक अमी ही तो सत्संगा विशंति केचिद भीता पंजल्यो गिनती स्वस्ति युक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुति भी पुष्कलावी। यही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। ऋषि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। देवता महर्षि सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का चेतन करने वाले, प्रस्तुति करने वाले भी भगवान हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का चेतन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। वज्र को इस विराट रूप में सब कुछ भगवत में ही दिखाई दिया। श्लोक 22 रुद्र आदि आदित्य बसो एचा साध्य विश्व अश्विनो मर्थ तो पाप्स पुनर्वेक्षा सुसिद्ध संगा विषमते त्वां विस्मिता श्री चैव सर्वे भक्तानि ते तो मौना दिशन्ति दृष्टा कालानि भयानकानि केचिद् लग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते किमिति तमंगे। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीषण देवों में ये कर्म भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सदृष्ट ये वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दारों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो पूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। श्लोक 28 यथा नदी नाम बहु अम्बु वेग समुद्र में मुखादंती तथा त्वामी न लोक वीरा विशंति भक्तान्या भी बीज बलंती। जैसे नदियों के बोझ से जल के प्रवाह स्वाभाविक समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शोरवीर आप सब की तरफ से ये दीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कि जितने भी लोग संसार से जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? भगवान के मुख में, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। श्लोक 29 यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास्तवापि समृद्ध वेगा। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। लेली हसे गाना समंताल लोकान समग्रान बदने जलाद भी तेजो विरापुर जगत समग्रम भाषस तबोग्रा प्रतिपंक्ति विष्णु। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन सब ओर से बार बार चाहते हैं। सारे लोगों इंसान की क्या बात होनी चाहिए, लोगों के लोग लोग तीन लोग पृथ्वी लोग स्वर्ग लोग पाताल लोग ऐसे जितने भी संपूर्ण लोग है सबको भगवान क्या करे ग्रास है अपने मुंह में डाले प्रचारते भी उसको। और हे विष्णु आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है, भगवान का ही तेज हमको तपाता है। श्लोक 31 अख्याय में को भगवान उग्र रूपो नमस्ते बड़ा प्रसिद्ध दिव्या तो छाणी मंत माध्यम नानी प्रजा नानी तब प्रवृत्ति। मुझे ये बताइए कि गुरु वाले आप कौन हैं? ये देवताओं में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हुए आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। अर्जुन क्या कहता है, भगवान के ऐसे गुरु को देख अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन है। पहले तो वो कृष्ण से साधारण से जैसे साथी थे दो, लेकिन जब उन्होंने विराट रूप धर लिया तो फिर भगवान वो अर्जुन पूछते हैं कि है कौन आप, मुझे सुन नहीं आ रही आप है कौन। श्री भगवान उवाच तो भगवान बताते हैं मैं कौन हूँ, कालोस्मी लोकशा कृता प्रबुद्धो लोकान समाहर्तनीय प्रवृत्ता इति त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता पत्रेषु योद्धा। श्लोक भक्ति श्री भगवान बोले मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। हम सोचते न इंसान गया कहाँ मर गया काल काल ग्रस्त हो गया, तो भगवान कहते मैं इंसान की क्या संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल में हूँ, संपूर्ण लोगों को मैं ही ग्रस्त कर लेता हूँ, इसमें मैं इन सब लोगों का सहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। और ये भी बता दिया कि उसमें कितनी सेना थी, महाभारत युद्ध में बहुत सेना थी अक्षौणियों के हिसाब से 18 अक्षौणी तो उनकी थी। तो भगवान कहते हैं जो को मैं इन सबको खाने के लिए आया हूँ, यहाँ तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। वो जो तुम तेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं ना ये भी नहीं लेंगे भी मर जाएंगे। तस्मात यशो लीतवा शत्रुद्धि निहत्ता पूर्वमेव मात्र भव सभ्य साचिन। श्लोक 33 इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, मत सोचो कि तुमने युद्ध करना है, खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो और शत्रुओं को जीत कर धन्य से संपन्न राज्य को भोगो, ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। क्या बोलते हैं कि मैंने तो सब पहले मारे थे, तू तो एक निमित्त बन जा। हे सभ्य साचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले, सभ्य साचिन किसको बोलते हैं, जो दोनों हाथों से अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाते थे, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ, मैंने तो मार रखे, ये तो एक बहाना होता है कि वो ताई और मर गए। व्याख्या निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, परंतु इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ और अपने को कारण मत मानो। समझने वाली बात है कि निमित्त मात्र कहे नहीं हाँ जाके खड़े हो गए, जैसे हम यज्ञों में हवन में खड़े हो जाते ना कुछ काम करते ना कुछ हाथ लगा देते, हमने भी आज हवन कर दिया या कोई बड़ा काम कर दिया या भंडारे में खाना खिला दिया, वो नहीं। भगवान कहते ऐसा नहीं, अपनी पूरी शक्ति लगाओ, निमित्त बनो किसके लिए कि मैंने कुछ नहीं किया, पर अपने को कारण मत मानो कि मेरे कारण हुआ ये, अपने उद्योग में कमी भी मत रखो, अपना जो कर्म है उसको खूब करो और अपने में अभिमान भी मत करो। ये अभिमित मात्र का मतलब ये सब कुछ करना है लेकिन ये नहीं कहना है, ये सोचना भी नहीं है कि मैं मेरे कारण हुआ मैंने किया, भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने क्या है, संसार है, इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। श्लोक 34 लवणम च भीष्म च जेद रथम च कर्णम स्थान यानापि योध विरान जया हस्तां त्वं मां प्रतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रमेश पत्नान। 34 द्रोण और भीष्म तथा जेद रथ और कर्ण तथा अन्य असली मेरे द्वारा मारे हुए शूर वीरों को तुम मारो। भगवान ने आश्वासन दिया अर्जुन को, मैंने इनको मार रखा है, नाम अपने को खड़े आए हैं, तुम व्यथा मत करो, तुम दुखी मत हो कि मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मैं उनको कैसे मारू, युद्ध करो, युद्ध में तुम अवश्य अपने शत्रुओं को जीत लोगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं, भले ही शूरवीर अर्जुन तुम्हें डर लगता होगा पर ऐसी बात नहीं है, पहले मरे हुए हैं, मैंने मार दिए। इससे साधु को ये समझना चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं। कौन से शत्रु है हमारे असली शत्रु कौन है? राग मतलब मोह, द्वेष मतलब दूसरे से द्वेष करना, बैर रखना, काम मतलब वासनाएं क्रोध करना, ये भी हमारे शत्रु हैं। इसको भगवान ने पहले भी मार रखा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम सोचते कि ये तो जिनको आता है ना हम सोचते बस ये तो है जिंदगी, अर्थात सत्ता रही थे इनको साधक ने भी सत्ता और महत्व देकर अपने में स्वीकार किया है, राग द्वेष काम क्रोध है नहीं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि अपने में राग भी रख लिया, द्वेष भी, काम भी, क्रोध भी, और फिर इसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन है नहीं इनकी कोई सत्ता नहीं है, भगवान ने इनको कोई सत्तावान नहीं बनाया है। संजीव वाच एक चित्वा वचनम कृष्णस्य कीतांजलि बेपुमाना कृति नमस्कृत भूया वाय कृष्णम सगदीत गीता प्रणम्य। श्लोक पंक्ति अब संजय बोले, क्यों बोले संजय? क्योंकि वो धृतराष्ट्र को भगवत गीता का जो भी प्रवचन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है वो संजय देखते हैं और फिर सुनाते हैं धृतराष्ट्र को। संजय बोले भगवान केशव का ये वचन सुनकर गए से कांपते हुए तीर्थधारी अर्जुन हाथ जोड़ कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। क्या बोले अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तुम प्रकृत्या जगत परिष्यते चीता दुशोधवंती सदे नमस्यंती च सिद्ध संगा। अर्जुन बोले हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का चिंतन करने से ये संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, ये सब होना उचित ही है। क्या बोले अर्जुन, क्या कहा? जो कुछ भगवान के लीला को देखा फिर अर्जुन ने वो कहा कि ये राक्षस लोग जो है तो भाग रहे हैं और जो अच्छे लोग हैं सिद्धगण है वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि विराट रूप में सब चलता है, अच्छे और बुरे, तमोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, सतोगुणी भी है। तमोगुणी तो भगवान से बहुत दूर रहता है, सतोगुणी बहुत नजदीक रहता है। श्लोक 37 कस्मात् तेना नमेन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकत्वे अनंत देवेश जगन निवास प्रमक्षम सदसत्तत्परम यत। श्लोक 37 हे महात्मन, योगों के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करे? भगवान तो कहते हैं अर्जुन की क्यों नहीं करेंगे वो सिद्धगण आपको नमस्कार, क्योंकि आप तो सब गुरुओं के गुरु और ब्रह्मा को भी आपने ही बनाया है, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप है, अक्षर का मतलब जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, तो भगवान अक्षर है, आप सत भी है और असत भी है, उनसे सत असत से परे भी जो कुछ है वह सब आप ही। अर्जुन ने देख लिया विराट रूप में और समझ लिया, ज्ञान हो गया कि भगवान ही सब कुछ है, अगर सत्य है तो असत्य भी है, क्योंकि इस जगत में सत्य की सत्ता है तो साथ ही सत्य भी असत्य भी जुड़ता है, तो इसलिए जो कुछ भी है वो भगवान ही है। व्याख्या, सत्य और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक है, जो इनसे परे अगर निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप है। लौकिक मतलब ई लोक जिसमें हम रहते हैं ना, अलौकिक जो हमें दिखता नहीं है, जिसका हमें अनुभूति होती है, ये दोनों लोक जो है इसका, यही दोनों लोक भगवान का समग्र रूप है। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से भी परे है। कहते हैं कि भगवान की जो कुदरत है, जिसको हम कुदरत बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, वो तो दो प्रकार की, एक परा है एक अपरा है, लेकिन दोनों ही सतत से परे नहीं है। दोनों प्रकृति जो है ये कुछ सत्य में लगी है और दूसरी असत से, पर परमात्मा जो है वो सत्य भी नहीं है असत भी नहीं है, वो इससे परे है। श्लोक 38, तुम्हारी देवा पुरुषा पुराण तमस्य विश्व परम निधानम देता से वेदन च परम च धाम अनंत रूपा। आप आदि देव और पुराण पुरुष है तथा आप इस संसार के परम आश्रय है, आप ये सबको जानने वाले जानने योग्य और परम धाम है। ये अनंत रूप आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। श्लोक 39, वायु यमो अग्नि वर्णा शशांका प्रजापति स्तम पिता महश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। नापि वायु यमो अग्नि वर्णा चंद्रमा दक्षादि प्रजापति पिता में ब्रह्मा जी के भी पिता है। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। श्लोक 40, नमा पुरस्तादक पृष्ठ तस्ते नमस्तुत सर्वता एव सर्वा अनंत अमित विक्रम स्तम सर्व समाप्तनोषे ततोसि सर्वा। श्लोक 40, हे सर्व स्वरूप आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दसों दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर असीम पराक्रम वाले आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र आदित्य बसु सद्यगण विष्णु देव अश्विनी कुमार मर्दगण पितृगण सर्प गंधर्व यक्ष राक्षस असुर ऋषि महर्षि सिद्धगण वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सूर्य आदि सब, और इनके सिवाय भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग है। इतना ही नहीं, अर्जुन संजय धृतराष्ट्र तथा कौरव पांडव सेना भी उसी विराट के ही अंग हैं। सर्व समापनोषी ततो असि सर्वा, तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ भी देखने सुनने में सोचने में आ रहा है वह सब अविनाशी भगवान ही है। मतलब ये सब कुछ है संसार, इस संसार से परे जो अलौकिक है वो सब भगवान ही है। समस्त लोक में भी और समस्त आसमान में, जहाँ भी खाली जगह है या भरी पड़ी है, जैसा भी है, जहाँ भी है, वहाँ भगवान ही भगवान है, ऐसा हमें अपने नेत्रों से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। अब मैं आपको श्री महाराज जी के कुछ प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जो आपको बहुत ही प्रेरणादायक और अच्छे लगते हैं। अच्छा, आज का प्रसंग है श्री महाराज जी किस प्रकार, उनका क्या व्यक्तित्व था, वो किस प्रकार अपने व्यक्तित्व से हम लोगों को, प्रत्येक जीव को और अपना समझते थे, और सब में भगवान के दर्शन करते थे, और दर्शन करते हुए वो सबको अपना ही मानते थे, बाबा जी सब भूतों में परमात्मा के तथा परमात्मा में सब भूतों के दर्शन करते थे, वही गीता वाली बात आ गई अर्जुन वाली कि जो कुछ भी है वो परमात्मा में है और परमात्मा भी सब में समाया हुआ है। तो बाबा जी इसी थ्योरी को, इसी दर्शन को, इसी फिलोसफी को लेकर के कुल्लू घाटी में आए और इसी दर्शन को लेकर उन्होंने श्री महावीर तीर्थ बनाया, इसका प्राकट्य किया और वहाँ यही प्रचलित हुआ कि सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है। इसलिए महाराज को परमात्मा अदृश्य नहीं था। बाबा जो ये श्रद्धावान योगी थे, वे कहा करते थे मन बड़ा चंचल है, योग की प्राप्ति के लिए मन को जीतना आवश्यक है। सत रज तम इन तीनों गुणों के सात्विक रासिक तामसिक तीन भाव हैं। तीनों प्रकार के भावों में ही संसार मोहित हो रहा है, यही माया है जो दुस्तर है। परंतु भगवान का आश्रय लेने से प्राणी दुस्तर को भी पार कर जाता है। बाबा जी तीनों गुणों से परे होकर स्वयं भी माया से तर गए थे। ये तीन गुण ही माया है, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। से अगर कोई परे हट जाए, निकल जाए, तो वो भगवान तक पहुंच जाता है। बाबा जी ये तीनों गुणों से परे होकर स्वयं भी माया से तर गए थे तथा भक्तों को ही तार गए हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करने वाले बाबा जी की शिक्षा थी कि द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त होकर भगवान का भजन करो। कितनी बड़ी शिक्षा है, द्वंद्व मतलब ये करूं कि वो करूं, द्वंद्व तक जहाँ दो हो जाए, संसार में नौकरी करूं या ना करूं, पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, मतलब जहाँ भी ऐसी बात आती करूं या ना करूं, उसको द्वंद्व कहते हैं। लेकिन बाबा जी ने कहते थे इससे मुक्त हो जाना चाहिए और भगवान का नाम का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन ही मुक्तिदायक है। अंत काल में बाबा जी कह उठे राम नाम सिद्ध है। वे कहा करते थे यदि आप पखाना गृह में भी हो तो भी राम नाम जपो, ना जाने मृत्यु कब आ जाएगी। राम नाम को उन्होंने सिद्ध कहा, राम नाम सिद्ध है, सिद्ध है मतलब ये पूरी तरह से इस पर रिसर्च हुई है, राम नाम पर ये बिल्कुल भगवान का पूरा पूरा नाम है। इसलिए हमें उठते बैठते सोते जागते जहाँ भी हम है वहाँ में राम का नाम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का पता नहीं है। हम सुनते हैं किसी मृत्यु पखाने में हुई, किसी की मृत्यु नदी के किनारे हुई, किसी की घर में हुई, कोई गिर गया, मतलब जो भी है। तो हमें इतना अभ्यास करना है भक्त जनों कि हम राम नाम जपते ही रहे, ताकि जहाँ भी हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु का समय और स्थान निश्चित होता है लेकिन हमें नहीं पता होता है, इसलिए हमें अवश्य राम नाम का जप कंटिन्यूसली निरंतर करना चाहिए। मनुष्य को अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर भगवान का सम्मान करना चाहिए। ओम अक्षर ब्रह्म भगवान का परम धाम है, हमें इसे ही प्राप्त होना है। इस भगवत धाम की प्राप्ति भक्ति से होगी, भक्तों का योग क्षेम से हम भगवान बहन करते हैं। बाबा जी कहते थे तुम केवल भक्ति करो, भगवान स्वयं तुम्हारी संभाल करेगा, ये है योग क्षेम संभालना। बाबा जी ने अपने आम शब्दों में हमें बताया कि तुम्हें और कुछ नहीं करना, सोचना नहीं, विचारना, तुम केवल भगवान का नाम जपो, भक्ति करो, भगवान को स्वयं ख्याल आएगा, वो बोलेगा इसको खाना भी देना है, इसको बस्ते भी देना है, ये तो बैठ गया मेरा नाम लेके, अब क्या करूँ, उठना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो भगवान स्वयं करते हैं, इसको कहते हैं योग क्षेम को भगवान ही बहन करते हैं। बाबा निर्गुण निराकार की अनुभूति करते हुए सगुण साकार के उपासक थे। भगवान के दो रूप बताए ना, एक निर्गुण निराकार, निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं है और निराकार उसका कोई रूप भी नहीं है, लेकिन एक सगुण साकार है जिसका रूप भी है और गुण भी है उसमें। तो बाबा तो दोनों को ही मानते थे, वे शुद्ध बुद्धि वाले निष्काम प्रेमी भक्त थे। उनके द्वारा अर्पित फल फूल भी भगवान सगुण रूप से ग्रहण करते थे। ये अपना प्रत्येक कर्म प्रभु को अर्पित कर देते तथा शुभ अशुभ से मुक्त रहकर कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते थे। अन्य देव स्त्री पुरुष जो कोई भी उनकी शरण में आया, बाबा ने उन्हें अपनाया, प्रेम दिया तथा भक्ति प्रदान की। बाबा कहते थे कि भक्त को अपना मन भगवान में रखते हुए भगवान की ही पूजा करनी चाहिए तथा भगवान का ही भजन करना चाहिए। क्या कहते थे कि भाई अपना मन भगवान में रखो, फिर पूजा भी करो और भजन भी करो पूजा, क्योंकि वो साकार को मानते थे। मंदिर जो है वो साकार है, उसमें साकार मूर्तियां हैं, तो साकार की पूजा भी करनी चाहिए और उनका भजन भी करना चाहिए। परमात्मा अनादि है, अनादि उसे कहते हैं जो आदि रहित है, जिसका कोई पहले शुरू नहीं है, जो कहीं से हुआ वो आदि होता है, वो अनादि होता है। और परमात्मा साथ ही सबका कारण है, परमात्मा से ही ये संसार की सृष्टि का कार्य हुआ है, कारण से ही कार्य होता है। परमात्मा को तत्व से जानना चाहिए, तत्व से जानने का अर्थ है जो कुछ दृश्यमान संसार है ये सब भगवान की माया है। एक वासुदेव भगवान सर्वत्र विराजमान है, वासुदेव ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति के कारण है और सारा जगत उसी में चेष्टा करता है। ऐसा जानकर बाबा निरंतर भगवान को भजते हुए निष्काम कर्म योग में तल्लीन रहते थे। भगवान ने उन्हें तत्व ज्ञान योग प्रदान किया था जिससे वे भगवान को प्राप्त थे। तत्व ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से भक्त का ज्ञान जनित अंधेरा दूर हो जाता है, परंतु ये तत्व ज्ञान भगवान का ही अनुग्रह है। मतलब ये तत्व ज्ञान भी उसी को मिलता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। प्रभु के अनुग्रह के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो भक्त भगवान को प्रेम पूर्वक भजते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें तो प्रभु के पास है तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। किसको होती है? जो कि भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करते हैं तो तत्व ज्ञान भीतर से अपने आप ही आ जाता है कि भगवान की सृष्टि क्या है और भगवान इस सृष्टि के कारण है। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने भक्ति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ये गीता अध्याय 4 श्लोक 6 है। इस रूप को ना तो देव जानते हैं और ना ही असर, परंतु भगवत अनुग्रह से भक्त जान लेता है। बहुत सुंदर श्लोक है, वो श्लोक है। अजो अपनी सुलभ्य आत्मा भूत अनामी श्रो अपनी सन तीन स्वाम अधिष्ठाए सम्य आत्मा। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं मैं अजन्म हूँ, मेरा जन्म नहीं होता और मैं अविनाशी भी हूँ, मेरा विनाश भी नहीं होता और मैं सब प्राणियों का ईश्वर हूँ, करता धरता हूँ। और अपनी प्रकृति जो संसार है, योग माया है, कुदरत है, इसको अपने धीम भी रखता हूँ। और फिर मैं प्रकट होता हूँ कैसे? अपनी योग माया का सहारा लेके ही प्रकट होता हूँ। लेकिन बहुत कठिन बात ये है कि ना तो देवता लोग जानते हैं ना ही राक्षस कि ये कैसे भगवान हैं और कैसे प्रकट होते हैं। ये केवल भक्त ही जान लेता है और वो भी भगवान का उस पर अनुग्रह होता है। बाबा के दर्शन उपरांत मुझे लगा कि बाबा का ये रूप लीला में ही है, वे अपनी इच्छा से प्रकट हो गए हैं। श्रीमद भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो जो भी विभूति युक्त कांति युक्त तथा शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। क्या बोला गीता में भगवान ने? क्या कहा? विभूति योग पीछे पड़ा कि जो भी जहाँ कांति है, शक्ति है, जहाँ तेज है, वो सब मैं मुझे ही जान, मेरी अभिव्यक्ति जान, मतलब मैं ही वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मैंने समझ लिया था कि मेरे प्राणों के प्राण भगवान ही बाबा के रूप में आए हैं तथा अपने ऐसे रूप को गुप्त करके भिखारी के रूप में रहते हैं। भगवान की अनुग्रह से, भगवान श्री राम जी के अनुग्रह से मुझे ये अनुभूति हुई थी कि बाबा जी भी भगवान की कोई विभूति है जो भगवान की इच्छा से यहाँ भिखारी के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान में ज्ञान ऐश्वर्या शक्ति बल व्यय और तेज है। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें ये 6 इकट्ठी मिल जाए वही भगवान होता है। कौन कौन सी? एक तो ज्ञान होना चाहिए, दूसरा ऐश्वर्या, खूब जैसे भगवान कृष्ण, और शक्ति होनी चाहिए, बल भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए और तेज। तो ये छह चीजों का जहाँ मेल होता है उसको हम भगवान कह सकते हैं, वो भगवान है। प्रभु उत्पत्ति पहले स्थिति तथा अंत से शासन करने वाला होने के कारण प्रभु है। बाबा जी ने मंदिर में विराट रूप भगवान की प्रतिष्ठा की है। ये विराट स्वरूप अनेक गुणों वाले तरुण से युक्त है, दिव्य भूषणों से भूषित है, अपने हाथों में दिव्य शस्त्र उठाए हैं, दिव्य वस्त्रों से सज्जित विराट स्वरूप में संपूर्ण देवता है, भूतों के समुदाय है, ब्रह्मा व महादेव है। ये विराट स्वरूप आदि मध्य अंत से रहित है। ऐसे विराट स्वरूप के दर्शन करके विराट भगवान के दर्शनों की कल्पना सहजी हो जाती है, अर्थात ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ भगवान ने ही समाया है। अभी हमने विराट स्वरूप पढ़ा गीता में और यही बाबा जी के जीवन में अभी हमने पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस विराट की अनुभूति जप तप यज्ञ या वेदों का ध्यान करने से नहीं, अपितु जब भगवान अनुग्रह करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं तभी विराट में भगवान के दर्शन होते हैं। बाबा जी के संपूर्ण कार्य भगवान के लिए थे, वे भगवान प्रायण थे, असत्य थे। एक बार एक व्यक्ति ने बाबा जी से रक्त मांगा। बाबा जी ने कहा प्रातः 4 बजे आ जाना। वह व्यक्ति 4 बजे आ गया। बाबा ने चाकू द्वारा अपनी उंगली काट कर अपना रक्त निकाल कर दे दिया और कहा शीघ्र चले जाओ, कोई देखेगा तो तुम्हें पीटेगा। बाद में इस घटना का कुछ भक्तों को पता चला तो भक्त जन उस व्यक्ति को दंड देने के लिए उतावले हो उठे, परंतु दया निधान बाबा ने उन्हें शांत कर दिया। बाबा जी क्षमाशील थे। सगुन उपासक बाबा ने मूर्ति पूजा के द्वारा सगुन उपासना के महत्व को प्रकाश में लाया। सम योगी होते हुए भी निर्विकल्प समाधि में रहते हुए भी जन साधारण के लिए मूर्ति पूजा सगुन उपासना स्थल निर्मित कर दिए हैं। भगवान कहते हैं मैया विश मनोरे माम नित्य युक्ता उपास श्रद्धा परोपेत अस्ते में युक्त समा माता गीता अध्याय 12 श्लोक 2 तथा अनुमत में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अच्छे श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, जो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गीता माम जय माता दी।